19वां चैप्टर ऐतिहासिक ज्ञान की दार्शनिक समस्याएं। इतिहास का ज्ञान किसी सामान्य नियम की खोज न होकर किसी घटना विशेष को समझने की चेष्टा है और इस तरह प्रत्यक्ष का विषय वर्तमान में स्थित कोई वस्तु या घटना होती है, न कि वह नियम जिसके अनुसार यह माना जाता है कि वह घटना घटी है या वस्तु वहां उपस्थित हुई है। वास्तव में नियमों के संदर्भ में देखने पर वस्तु भी घटना का ही रूप धारण कर लेती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तब यह जानना होता है कि वह कब और किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु जिसका हमें ज्ञान होता है उसका प्रादुर्भाव और विलय दोनों होते हैं और केवल मध्य अवस्था में वह व्यक्तता को प्राप्त होती है। परंतु इस तरह देखने पर एक तो यह बात मानना पड़ेगा कि जो इस समय व्यक्त अवस्था में है वह पहले अव्यक्त अवस्था में था और अपने विलय के बाद पुनः उस अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होगा। गीता में अव्यक्तादिनी भूतानी कहकर इस बात की ओर संकेत किया गया है, पर इस संबंध में एक प्रश्न तो यह उठता है कि प्रादुर्भाव के पहले की अव्यक्त अवस्था में और विलय के बाद की अव्यक्त अवस्था में कोई भेद है या नहीं, और यदि है तो क्या है। दूसरा प्रश्न इस बात से संबंधित है कि अव्यक्त और व्यक्त अवस्था में क्या भेद है। क्या जो व्यक्त हुआ है उसकी सत्ता अभिव्यक्ति के पहले और अभिव्यक्ति के बाद में एक सी ही रहती है। इन प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न दिशाओं में ले जाते हैं और उन दिशाओं के अनुसार अलग अलग दर्शनों का जन्म होता है। न्याय दर्शन में प्रागभाव और ध्वंसाभाव का भेद पहले प्रश्न के संदर्भ में ही किया गया है, परंतु इसीलिए उनको किसी अव्यक्त अवस्था की बात करना बेकार लगता है। अव्यक्त की बात तो सांख्य दार्शनिक उठाते हैं जो कार्य को कारण में पूर्ण रूपेण से निहित मानते हैं। उनके इसी मत को सत्कार्यवाद का नाम दिया गया है, पर निहित मानने पर भी कुछ भेद तो मानना ही पड़ेगा। हो सकता है कि यह भेद चेतना से संबंधित हो जिसका कार्य अव्यक्त को व्यक्त करना है। एक प्रकार से ज्ञान को सत्य होने का लक्षण ही यह समझा जाता है कि यह अभिव्यक्ति को छोड़कर ज्ञान के विषय में और कुछ भी न जोड़े। परंतु ऐसा मानने पर प्रादुर्भाव का अर्थ चेतना का विषय मानना होगा, न कि किसी वस्तु का अस्तित्व में आना, और इस तरह इसके अनुसार यह मानना पड़ेगा कि सब वस्तुओं का सब समय अस्तित्व है, न किसी का जन्म होता है न किसी का विनाश, और इसी प्रकार काल पर चिरंतन भ्रम का रूप धारण कर लेगा। असल में सब कुछ देश जैसा ही हो जाएगा जिसमें सब वस्तुएं सदैव विद्यमान होगी। अव्यक्त और व्यक्त का भेद और उनके बीच के संबंध दर्शन के सदैव रोचक विषय रहे हैं, परंतु उसके बारे में विस्तार से विचार की यहाँ कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वस्तु विशेष या घटना विशेष का ज्ञान देश काल में स्थित विषय का ज्ञान होने के कारण उन समस्याओं से मुक्त समझा जाता है जो ज्ञान की त्रिकालिकता के संदर्भ में उत्पन्न होती है। परंतु पहले तो भूत और वर्तमान संबंध विशेष के ज्ञान में एक अंतर माना जाता है जिसकी चर्चा जरूरी है। भूत का ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय न होकर स्मृति का विषय होता है या किन्हीं ऐसी बातों पर आधारित होता है जो होती तो वर्तमान में है लेकिन जिनके आधार पर हमें ज्ञान ऐसी घटनाओं का होता है जो सिद्धांततः कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यह एक तरह से अनुमान पर आधारित ज्ञान कहा जा सकता है, पर इसमें और अन्य प्रकार के ज्ञानों में मूलतः भेद वही है कि जबकि ध्रुव के आधार पर अनुमानित वही प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है। अशोक, अकबर या बुद्ध के बारे में अनुमानित घटनाएं कभी भी ऐसा रूप धारण नहीं कर सकती। इसके विपरीत प्रत्यक्ष का विषय अनुमान के विषय को सत्यता असत्यता प्रदान करता है, पर यदि भूत संबंधी ज्ञान के विषय कभी भी प्रत्यक्ष के विषय बन ही नहीं सकते तब उनकी सत्यता असत्यता का निर्धारण कैसे हो सकता है? यही इतिहास की मूलभूत दार्शनिक समस्या है और इसको सुलझाए बगैर यह फैसला मुश्किल है कि इतिहास संबंधी ज्ञान वास्तव में ज्ञान है भी या नहीं। इस संदर्भ संबंध में यह कहा जा सकता है कि भूत की घटनाओं के बारे में वर्तमान के आधार पर जो अनुमान लगाया जा सकता है उसकी सत्यता असत्यता का निर्धारण इन घटनाओं के वर्तमान में कुछ अन्य अवशेष मिलने पर लगाया जाता है, और चूंकि अवशेष वर्तमान में प्रत्यक्षानुभूत होते हैं इसीलिए वास्तव में कोई नई समस्या नहीं उठती। दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि विज्ञान के कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमानित स्वयं में अधिकतर प्रत्यक्षानुभूत होने में असमर्थ है, वरना वे तो केवल अपने इंद्रियाभूत प्रभावों के द्वारा ही जाने जाते हैं और इन प्रभावों के आधार पर ही उनकी सत्यता असत्यता का फैसला होता है। एक तरह से इसमें दोहरा अनुमान होता है, एक बार प्रत्यक्ष से अनुमानित तथ्य की ओर और दूसरी बार अनुमानित तथ्य से किसी अन्य नए प्रत्यक्ष की ओर। इन अनुमानित तथ्यों की स्थिति इस प्रकार उन कुछ पुराने देवताओं की तरह है जो स्वयं अगोचर होते हुए भी अपने प्रभाव से अपनी सत्ता अभिव्यक्त करते रहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य भी इसी प्रकार स्वयं अगोचर होते हुए भी अपने प्रभाव द्वारा ही जाने जाते हैं। इतिहास और अन्य वैज्ञानिक ज्ञान में यह समानता प्रथम दृष्टि में उस समस्या को सुलझाती प्रतीत होती है जिसको हमने इतिहास की मूलभूत समस्या के रूप में देखा था, परंतु थोड़ा और सोचने पर यह समानता केवल ऊपरी और सतही दिखाई देती है। ऐतिहासिक घटना तो वह घटना है जो घट चुकी होती है, यानी जिसका अस्तित्व ही एक प्रकार से समाप्त हो चुका है, पर जिसका अस्तित्व समाप्त हो चुका होता है उसका प्रभाव कैसे हो सकता है? विज्ञान के अनुमानित तथ्य गोचर ना हों लेकिन उनका अस्तित्व तो माना ही जाता है, और वह भी वर्तमान में। उनका गोचर प्रभाव इसीलिए समझ में आ सकता है, परंतु जो है ही नहीं उसके प्रभाव की बात करना ही अजीब लगेगा। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि जिसके आधार पर ऐतिहासिक तथ्य का निर्णय किया जाता है उसका उस तथ्य से कोई न कोई संबंध तो होगा ही, अन्यथा हम उसको आधार के रूप में कैसे स्वीकार कर लेते? कुछ क्रमबद्ध संबंध में तो मानना ही पड़ेगा, पर इससे भी जो अधिक मानना जरूरी है कि ऐसे क्रमबद्ध संबंध अनेक हैं, क्योंकि बगैर ऐसा माने यह फैसला नामुमकिन हो जाएगा कि वर्तमान के आधार पर हमने जिस भूतकाल की घटना का अनुमान किया है वह वास्तव में सत्य थी। उसके सत्य होने की संभावना तो इसी बात पर निर्भर करती है कि उससे संबंधित कुछ अन्य बातें जिनका पहले पता नहीं था वर्तमान या भविष्य में मिलती हैं या नहीं। इतिहास का आधार अपने आप में दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक वे जिन्हें अवशेष के रूप में देखा जा सकता है और दूसरी किसी के द्वारा इन घटनाओं का वर्णन। अवशेष स्वयं दो प्रमुख वर्ग बनाते हैं, एक जो भाषा में बंधे होते हैं, दूसरे जो वस्तुओं से संयोजित होते हैं। यह भेद महत्वपूर्ण होते हुए भी अपने से अधिक महत्वपूर्ण समानता को छिपाता है, और वह समानता यह है कि अवशेष चाहे भाषा में बद हो या वस्तु से संयोजित, वह होता हमेशा मानव की कृति ही है, और जो मानव की कृति होती है वह हमेशा कुछ अर्थ लिए होती है, ऐसा अर्थ जो वस्तु के माध्यम बनाकर भी वस्तु से सदैव परे जाता है। इस तरह जिस प्रकार भाषा मनुष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करती है उसी प्रकार मानव की अन्य सब कृतियां करती हैं। यही इतिहास के आधार की विशेषता है, परंतु यही विशेषता उसके लिए एक ऐसी समस्या को जन्म देती है जो ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, और वह है किसी भी अर्थवान वस्तु के अर्थ को समझने की चेष्टा और उस चेष्टा की किसी भी मनुष्य को समझने के संदर्भ में उत्पन्न होती है, क्योंकि मनुष्य सदैव अर्थों को जन्म देता है और मनुष्य मनुष्य के बीच का संवाद एक दूसरे के अर्थों को समझना ही है। आगे चलकर हम इसकी विशद चर्चा भी करेंगे, परंतु एक भेद जो इतिहास के आधारों को अर्थ समझने में और संवाद में है वह सिद्धांततः इस बात से संबंधित है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वह तो हमको यह बता सकता है कि हम उसकी बात ठीक समझे हैं या नहीं, जबकि यदि अर्थ का सृष्टा ही नष्ट हो गया है तो यह संभावना ही नहीं रहती कि कोई अधिकार पूर्वक यह कह सके कि जो हमने समझा है वह सही समझा है या नहीं। इतिहास एक प्रकार से ऐसे ही अर्थों को समझने की चेष्टा है जिनके सृष्टा सदैव के लिए नष्ट हो चुके हैं, अतः उनके विषय में हमारी समझ सही है या गलत इसका फैसला एक तरह से नामुमकिन ही है। तरह तरह के अंदाज लगाए जा सकते हैं, पर अंदाज लगाने को तो ज्ञान नहीं कहते। तब क्या इतिहास ज्ञान नहीं है? और यदि ज्ञान है तो कैसा ज्ञान है? एक बात हमने पहले कही थी कि इतिहास का ज्ञान कम से कम किसी सामान्य नियम का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए उसके संबंध में वे समस्याएं उत्पन्न नहीं होती जो किसी भी नियम के ज्ञान के संबंध में होती है। परंतु चूंकि वह भूतकाल से संबंधित होता है और मनुष्य की अर्थगर्भ कृति के आधार पर मनुष्य के बारे में ज्ञान होता है, इसीलिए उसकी समस्या कुछ और रूप में होती है। भूतकाल का ज्ञान सुदूर नक्षत्रों से लेकर सौरमंडल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि तक के विषय में होता है, लेकिन क्योंकि यह ज्ञान एक प्रकार से नियमों पर आधारित होता है इसीलिए उसके विषय में भूत भविष्यत के भेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी सुदूर नक्षत्रों, सौरमंडल और पृथ्वी की भूतकाल की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान है, और जो प्राणी की भूतकाल की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान है उसमें एक गहरा भेद है। प्राणी जगत अपने अवशेष छोड़ जाता है और उसी के आधार पर हम उसकी पहले की अवस्थाओं का क्रम स्थापित करते हैं। बहुत बार तो हम इन्हीं के आधार पर पुराने जलवायु की भी कल्पना करते हैं, क्योंकि इतना हमें भी पता होता है कि किस प्रकार के पशु पक्षियों को किस प्रकार के जलवायु की जरूरत तो होती है, लेकिन जड़ जगत में अवक्षेप जैसी कोई चीज नहीं होती, कम से कम उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से प्राणी जगत में होती है। पर इसीलिए जड़ जगत की भूतकालीन अवस्था के ज्ञान के बारे में एक ऐसी समस्या पैदा होती है जो प्राणी जगत के बारे में नहीं उठती। जहाँ अवशेष होता है वहाँ अटकल लगाने का कुछ तो आधार होता ही है, परंतु जहाँ अवशेष नहीं वहाँ कुछ भी वहाँ जहाँ अवशेष नहीं है वहाँ जो कुछ भी है उसी को अवशेष का रूप दिया जा सकता है और नियमों के आधार पर उस कारण की कल्पना की जा सकती है जिसका जो आज है वह कार्य रूप में परिणाम है। पर कल्पना वास्तव में सत्य है या नहीं इसका निश्चय कैसे किया जाएगा? अधिकतर तो कार्य कारण के ज्ञान की सत्यता परीक्षण की अवस्था में कारण को बार बार दोहराकर कार्य की प्राप्ति के द्वारा सिद्ध होती है, पर अगर कारण दोहराया ही ना जा सके तो उसके कारण होने की बात का फैसला नामुमकिन हो जाएगा। उसका स्थान केवल एक संबद्धता ले लेगी जो अंततः एक संबद्ध कहानी से अधिक कुछ नहीं रह जाएगी। विश्व की उत्पत्ति की चर्चा चाहे वह कितनी ही वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में की जाए इससे अधिक और कुछ नहीं है। समाप्त।